पांच अणुव्रत और तीन गुणव्रतों के अतिचारों को आपने 2 दिन में सुना जाना है कि किस प्रकार से पांच ऐसे क्रियाएं हैं कि जिनसे व्रतों में दोष लगते हैं। आज चार शिक्षा व्रत के पांच पांच अतिचारों के बारे में जानेंगे, अर्थात 20 अतिचार अभी जो शेष बचे हैं उनके बारे में जानकर और इस अध्याय का समापन करके कल से हम पांचवी ढाल में आ जाएंगे। तो शिक्षा व्रत चार होते हैं। सामयिक शिक्षा व्रत, प्रोषिधोपवास शिक्षा व्रत, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। पहला शिक्षा व्रत है सामयिक, माने कि जो इन 12 व्रतों को धारण करते हैं, अर्थात दो प्रतिमा के व्रत गुरु से लेकर उनका परिपालन करते हैं, उन्हें 2 समय की सामयिक भी करनी होती है, प्रातः काल और सायंकाल। जो कोई भी व्रत नहीं लेते हैं, केवल अणुव्रती या मूल गुण के अष्ट मूल गुण के धारक होते हैं, वे भी एक समय सामयिक करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे मानो उलझनों में फंसा रहता है। कुछ क्षण के लिए शांति की अनुभूति करने के लिए एकांत स्थान में बैठकर और पाठ पढ़ना सामयिक का विधिवत शास्त्रीय रीति से, और मन के अंदर सारे संकल्प विकल्पों को छोड़कर समता परिणति को धारण करना, ये प्रत्येक गृहस्थ का भी और श्रावक श्राविका का कर्तव्य होता है। तो जो चार शिक्षा व्रत हैं उनमें पहला शिक्षा व्रत है सामयिक। सामयिक शिक्षा व्रत का पालन होता है, उसे पांच प्रकार से दोष लगते हैं। उन दोषों को इसलिए बता रहे हैं कि जब हम दोषों को जानेंगे तो उनका त्याग करेंगे, दोष उत्पन्न नहीं होने पाए ऐसा उपक्रम करेंगे। तो पांच अतिचार ऐसे हैं: मनोयोग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान, काय योग दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृत्यनुपस्थापन। अर्थात सामयिक करने में जो पहला है कि मन की अन्यथा प्रवृत्ति करना, बैठे तो है सामयिक में, मन इधर उधर भाग रहा है, किसी किसी तरह से मन को अपने आत्मा में स्थिर करने की कोशिश करना। तो मन को कि अन्यथा प्रवृत्ति माने मिथ्या प्रवृत्ति कई कई बार हो जाती है, मन नहीं लगता, तो वह मनोयोग दुष्प्रणिधान कहा जाता है। ऐसे ही वचन योग दुष्प्रणिधान है कि वचन की अन्यथा प्रवृत्ति करना, वचन योग दुष्प्रणिधान है। अर्थात जहाँ वचनों से भी मीठे वचन बोलकर समता का उपदेश देना चाहिए, वहीं वचन की कोई प्रवृत्ति यद्वा तद्वा होने लगती है, दूसरे के लिए अहितकारी, अपनी आत्मा के लिए अहितकारी, तो ऐसे वचनों को कहा वचन योग दुष्प्रणिधान। ये सामयिक शिक्षा व्रत में दोष उत्पन्न कराता है। तीसरा काय योग दुष्प्रणिधान है, अर्थात शरीर की अन्यथा प्रवृत्ति करना काय योग दुष्प्रणिधान है। जो कहा गया कि मन वचन काय को स्थिर करके बैठकर सामयिक करना या मंदिर में जाके सामयिक करना, उसमें भी शरीर की अन्यथा, इधर इशारा कर रहे हैं उधर कर रहे हैं मन नहीं लग रहा, तो ये काय योग दुष्प्रणिधान है। ऐसे ही चौथा है अनादर, उत्साह रहित कि भाई अब करना तो पड़ेगा क्या करें, तो उत्साह रहित होकर के एकदम बेमन से सामायिक करना, ये सामायिक का अनादर है। और पांचवा है स्मृत्यनुपस्थान, अर्थात एकाग्रता नहीं है, तो एकाग्रता के अभाव में सामायिक पाठ आदि का भूल जाना, कई बार मन इधर उधर अस्त व्यस्त होता है तो जो पढ़ना होता भूल जाते हैं, ये भी अतिचार। अतिचार माने दोष, इसे व्रत भंग नहीं हुआ दोष लग गया। तो इन पांच दोषों को इसलिए बताया कि हम सामायिक करें तो कोशिश करें कि अपने मन वचन काय को अच्छी तरह से अनुशासित करके कुछ देर के लिए आत्म शांति का पाठ पढ़ें। ये हो गए पांच अतिचार माने पांच दोष सामायिक शिक्षा वृत्त। अब दूसरा शिक्षा वृत्त आता है प्रोषधोपवास शिक्षा वृत्त। प्रोषधोपवास का हमने बताया था आपको कि प्रोषधोपवास का असली मतलब क्या है, अष्टमी चतुर्दशी जो महीने में दो पर्व आते हैं उनके पहले दिन और अगले दिन यानी सप्तमी और नवमी, या 13 और अमावस, या 13 और पूर्णिमा, ऐसे 3 दिन तक लगातार एक आसन करना, या एक दिन बीच में अष्टमी या चतुर्दशी को उपवास करना। सबसे कम ये है कि महीने में जो दो अष्टमी दो चतुर्दशियां तो कम से कम बिल्कुल पक्का शुद्ध भोजन के साथ एक आसन करना, ये प्रोषधोपवास है जिसने व्रत ले लिया है, यानी कि 12 व्रतों का पालन करने वाले में। अब उसमें 5 दोष लगते हैं, कौन से? अप्रत्यवेक्षिता, प्रमार्जितोत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षिता, प्रमार्जिता दान, अप्रत्यवेक्षिता, प्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, अनादर, स्मृत्यनुपस्थान। ये 5 अतिचार किसके? प्रोषधोपवास के। तो समझिए आप कि बिना देखी बिना सोधी हुई जमीन पर मल मूत्रादि का क्षेपण करना अप्रत्यवेक्षित माने बिना देखे, प्रत्यवेक्षित माने देख करके, और अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित, पहले तो देखा नहीं फिर उसको सोधा नहीं, माने वहां अपने रुमाल से, ये तो श्रावकों की बात है, क्योंकि उसको प्रमार्जित करके वहां शुद्ध करके भूमि को और वहां मलमूत्रादि का विसर्जन करना, बिना देखे बिना सोधे हुए पूजन आदि के उपकरण उठाना, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जिता दान, आदान, आदान माने ग्रहण करना, पूजन के बर्तन हैं, स्वाध्याय की पुस्तकें हैं, इन सब चीजों को प्रोषधोपवास के दिन बिना देखे सोधे ऐसे ले लिया। कोई भी जीव मर सकता है, गंदे हैं, धूल लगी है, तो ये कुल मिलाकर हमारा उपयोग जो है अनादर का है, माने उत्साह नहीं है या सावधानी नहीं है कि हम देख सोच करके चीज को ग्रहण करें, देख सोच करके उठाएं धने चीज, तो ये अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जिता दान नाम की नाम का अतिचार है। तीसरा अतिचार है बिना देखे बिना सोधे हुए वस्त्र चटाई आदि को बिछाना, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित संस्तरोपक्रमण है, यानी कि अपने जो ओढ़ने बिछाने के वस्त्र वगैरह हैं, चटाई वस्त्र बिस्तर, तो बिना देखे, अब कई कई बार छिपकली बिच्छू चींटी चींटे ततैये ये उसके अंदर होते हैं, तो उनसे हानि होने का भी डर रहता है और कोई जीव मरने के भी दोष लगता है, हिंसा का दोष भी, इसलिए अप्रत्यवेक्षिता प्रमा संस्तरोपक्रमण, संस्तर माने बिस्तर वगैरह, बिना देखे बिना सोधे और जाके लेट गए। आजकल जो लगे हुए बेड रहते हैं कभी कोई करता ही नहीं जल्दी, लेकिन उनको भी कम से कम रोजाना चादर को उठा करके झाड़ करके और उसको फिर से बिछाना चाहिए। अगर रोज आप प्रतिदिन बदल नहीं सकते तो इतना तो जरूर करना चाहिए। जो व्रतों का पालन करना चाहते हैं, ये व्रती की बात है, आवृति भी यदि सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उनको दोष कम से कम लगते हैं और पाप निर्जीर्ण होते हैं और पुण्य ज्यादा लगता है। और व्रतियों के लिए तो ये आवश्यक होता ही है कि जो 5 दोष लग रहे हैं उनका निवारण कीजिए, उनको छोड़िए, गुणों को ग्रहण कीजिए, और चौथा दोष है भूख से व्याकुल होकर आवश्यक धर्म कार्यों को उत्साह रहित होकर करना अनादर है। प्रोषधोपवास है, भूख से एकदम व्याकुल हो गए, बड़ी तेज भूख लगी है तो कोई भी धर्म कार्य नहीं किया, जाके एकदम भोजन में जुट गए, है ना, कहते ना भोजन करने में एकदम टूट पड़े, तो ऐसा ये भी दोष है, कभी हो जाता होगा, जब संभावित रहते हैं तभी दोषों को कहा जाता है, तो ऐसे दोष को भी टालना। और पांचवा है कि करने योग्य आवश्यक कार्यों को भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान है, माने कि अपने को प्रोषधोपवास करने में जो जो चीजें आवश्यक थी कि भाई हम इतनी वस्तु लेंगे, या हम भोजन के बर्तन आदि को साफ करेंगे, या हम खाने में ये विवेक रखेंगे, तो उन चीजों को भूल गए, और जैसे रोज सप्तमी को चल रहा था नीरस को चल रहा था, वैसे की वैसे करने करने लग गए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को हरि का त्याग कर देते हैं। ऐसा हमारे दिगंबर जैन शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा। देखो जब 6 रस होते हैं, 6 रस में कहीं हरि का नाम नहीं। तो हरि त्याग करना ये अपने श्वेतांबर परंपरा से आ गया और दिगंबर परंपरा में घुल मिल गया। तो आज लोग घी नमक शक्कर त्याग करना तो भूल गए, हरि त्याग कर देते हैं। और हरि त्याग कर देते हैं, फिर त्याग करते हैं, चना खाते हैं, पापड़ खाते हैं, बड़ी मंगोड़ी खाते हैं, जिनमें और ज्यादा दोष होता है, उनमें त्रस जीवों का घात होता है। इसलिए हरि में कोई बात नहीं। अगर हरि खाने में दोष है तो आपको सप्तमी को भी दोष लगेगा और 13 को भी दोष लगेगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने, जो आचार्य शांति सागर महाराज जी, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी आदि की परंपरा में जो चलाया, जो हमें ज्ञानमती माती बताती हैं कि 6 रस का त्याग करना वो तो तप में है, बहिरंग तप में, लेकिन हरि त्याग करना किसी भी तप में नहीं है। तो उसकी लोग दलील दे देते हैं कि दोष होता है। अगर दोष होता है तो आप साधुओं को क्यों खिलाते हैं, दोष होता है तो आप सप्तमी को क्यों खाते हैं। जिह्वा की लंपटता को रोकने के लिए आप नमक त्याग करें, आप शक्कर का त्याग करें, घी का त्याग करें, तो इन चीजों से अपने इंद्रिय का निग्रह होगा। लेकिन हरी का त्याग करके और दूसरी चीजें आप अटर सटर खाते हैं तो उसमें बल्कि दोष लगता है। तो ये जान लेना कि कहीं भी दिगंबर जैन आगम में आजकल के पंडितों ने लिख दिया हो, कहीं उसकी बात मैं नहीं कर रही, लेकिन किसी भी आचार्य प्रणीत ग्रंथ में, प्राचीन ग्रंथ में कहीं भी आपको हरि त्याग करने की बात नहीं लिखी है, नहीं मिलेगी। इसलिए इस धारणा को मिटाना। और यहाँ पर जो 5 अतिचार कहे गए हैं उनको रोधोपवास में टालने की कोशिश करना। अब है तीसरा शिक्षा व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोग माने खाने पीने की चीज, जो एक बार खा लिया दोबारा उसको उच्छिष्ट को नहीं खाते तो भोग है। और उपभोग माने वस्त्र, बिस्तर वगैरह जो बार बार काम में आते हैं, ज्वेलरी वगैरह, तो ये भोगोपभोग कहे जाते हैं। इनका प्रमाण करते हैं जो व्रती लोग हैं, इनका प्रमाण कर लेते हैं कि मैं इतनी चीजें खाऊंगा या इतने वस्त्र पहनूंगा, भाई 100, 500, 1000 साड़ी कपड़े, कुछ तो ज्वेलरी है, इनका प्रमाण कर लेते हैं, लिख लेते हैं, वरना भूल जाते हैं। कि इसमें 5 तरीके अतिचार लगते हैं, सचित्ताहार, सचित्त संबंधाहार, सचित्त सन्मिश्राहार, अभिशवाहार, दुपक्वाहार, यानी सचेतन हरे फल फूल आदि का भक्षण करना सचित्त आहार है। कोई एकदम छोटी एकदम अभी पकी भी नहीं है और किसी वनस्पति को तोड़ करके और वैसे खा लेना, जैसे कि पका करके खाते हैं या उसे छिन्न भिन्न करके खाते हैं, तो वैसे ही प्रयोग कर लेना, ये सचित्त आहार है। सचित्त पदार्थ से संबंध को प्राप्त हुई वस्तु का आहार सचिता, केले के पत्ते पर गरम गरम चावल वगैरह, या ठंडे पानी में एकदम गरम पानी मिला दिया, तो ये सचित्त संबंध, सचित्त का संबंध अचित्त के साथ हो गया, तो ये दोषास्पद है। तीसरा है सचित्त पदार्थ से मिले हुए पदार्थ का आहार करना सचित्त सन्मिश्राहार है। गरिष्ठ पदार्थ का आहार करना अभिशवाहार है। क्या होगा, दिन भर नींद आएगी और कभी अपना अपना उपयोग जो है स्थिर नहीं रहेगा, सामायिक में, पढ़ने में, गुरु की सेवा में, भैयावृत्ति में मन नहीं लगेगा। इसलिए गरिष्ठ आहार नहीं लेना चाहिए, ये शिक्षा व्रत में कहा है और संतों के लिए तो बिल्कुल ही कहा है कि राजा के घर का भोजन मतलब आहार के जैसा बनाया गया तो राजा के घर में करते हैं, लेकिन राज भोग वगैरह नहीं खाएं। उससे क्या है कि उनकी इंद्रियां उत्तेजित हो जाएंगी। इसलिए इन चीजों पर निग्रह करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अनुशासित करते हैं। जो अभिशवाहार गरिष्ठ पदार्थों का आहार ज्यादा नहीं करना। अब श्रावक के लिए तो यही कह सकते हैं कि ज्यादा मत करो, बिल्कुल तो नहीं कह सकते। क्या आप खाओ ही मत? क्या कभी पकौड़े नहीं बनेंगे? क्या कभी गुलाब जामुन नहीं बनेंगे? जलेबी नहीं बनेगी, राजभोग नहीं बनेगा, तो बनेगा लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना। अब अगर उसी उसी को खा लेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। तो बीमारी के साथ धर्म का भी परिपालन करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, और उन नियमों का जब पालन नहीं होता तो दोष बन जाते हैं, और उन दोषों को त्याग करने के लिए आचार्यगण कहते हैं कि ये अतिचार है, इससे आप बचें। और उसके बाद कहा पांचवा अतिचार, कम पके या अधिक पके हुए आहार पदार्थ का आहार करना दुपक्वा आहार है। कभी क्या आप देखते होंगे ना, चावल कच्चा कच्चा रह गया, दाल कच्ची रह गया, हो सकता है जिसका मादा कमजोर है, लीवर कमजोर है, जा करके उसको कुछ ना कुछ वो बीमारी पैदा कर सकता है। इसलिए जो कुशल गृहिणी है, पकाने वाले हैं, तो वो अच्छे से अच्छा भोजन पका करके संतों को देते हैं, घर वालों को सबको खिलाते हैं, स्वयं में खाते हैं। अब देखो रक्षाबंधन की कथा में आप पढ़ते सुनते होंगे कि जब 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ, विष्णु कुमार मुनि ने उपसर्ग दूर किया, उनके कंठ जल गए। उस समय उनको पूरी पकौड़ी मटरी नहीं दी गई, सबने विवेक का परिचय दिया कि सिवइयों का आहार बनाया। सिवई जो है सबसे ज्यादा कोमल मानी गई, और श्रावक श्राविकाओं ने बड़ा विवेक का परिचय दिया कि आज हमारे संतों के कंठ एकदम रुंध गए हैं, जल गए हैं, तो उनको ऐसा आहार चाहिए चिकना चिकना, सरलता से पहुंच जाए, सेक भी पहुंच जाए और उनके पेट में भी चला जाए। तो यह है विवेक, श्रावकों का विवेक गुण एक बहुत बड़ा गुण होता है। तो ऐसे कहा गया कि दुपक्व आहार मतलब ना कच्चा है ना बहुत ज्यादा पक गया है, ऐसे आहार को खाना और देना। तो ये पांच प्रकार के अतिचार आपको भोगोपभोग परिमाण व्रत भी बताए गए। अब अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार जो अंतिम शिक्षा व्रत है, और 12 व्रतों का भी अंतिम व्रत है। अतिथि संविभाग माने जो अतिथि आए हैं उनका सम्मान करके उनको भोजन कराना। तो उत्तम अतिथि तो होते हैं मुनि आर्य का, उसके बाद क्षुल्लक छुल्ली का, उसके बाद ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, उसके बाद भी जो अव्रती हैं और अपने सहधर्मी बंधु हैं उनको भी भोजन कराते हैं, ये अतिथि संविभाग। अब उसमें भी पांच प्रकार के दोष लगते हैं, सचित्त निक्षेप, सचित्ता पिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम। इन्हें सचित्त पत्ते आदि में भोजन को रखकर आहार में देना सचित्त निक्षेप है। सचित्त आदि पत्ते आदि से ढके हुए भोजन का दान करना सचित्ता पिधान है, और दूसरे दाता की वस्तु को दान में दे देना पर व्यपदेश है, वो नाराज हो जाएगा। आपने किसी की रखी हुई चीज दे दी, वो ढूंढ रहा है, वो नाराज हो जाए, आपने क्यों दिया, हमने तो किसी और के लिए रखी थी। तो ये दोष है। और अनादर पूर्वक दान देना अथवा दूसरे दाता से ईर्ष्या करके देना मात्सर्य, कि भाई इन्हें तो देना पड़ेगा, आप साधु का को भूखा तो रख नहीं सकते, तो ये अनादर भाव है। चाहे हम सूखा बिल्कुल दाल रोटी खिलाएं लेकिन अति भक्ति होनी चाहिए, और ऐसी भक्ति से देते हैं तो रूखे सूखे भोजन को देने पर भी उनके घर में रत्नों की वृष्टि हो जाती है, और साधु का खूब सामायिक आदि में मन लगता है। तो अनादर पूर्वक आहार देना या दूसरे दातार से ईर्ष्या करना, ये न देने पाए, तो ऐसा ईर्ष्या करके जो देते हैं तो ये मात्सर्य नाम का अतिथि संविभाग में दोष लग गया। योग्य कार्य का उल्लंघन कर अकाल में मुनियों को आहार देना कालातिक्रम है। मैं अभी तो जा रहा हूं, मैं आ करके आपको 3 बजे आहार दे दूंगा, आज महाराज सुबह मत उठना, दिन में उठ जाना। माने अपने काल के अनुसार तो उनको बता दिया और उनके काल का अतिक्रम कर दिया, तो महाराज आपके उससे थोड़ी चलेंगे, महाराज का जो समय है उसके अनुसार चलेंगे। तो ये अतिथि संविभाग व्रत इसलिए होता है कि अतिथियों को भोजन कराने से अपना भोजन शुद्ध हो जाता है, अपने घर का भोजन अक्षय हो जाता है, आप देखो कि जैन समाज का कोई बच्चा कभी भीख मांगते हुए नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के घर से एक तो एक मुट्ठी चावल निकलता है, भगवान के मंदिर में जाता है। दूसरा, हर व्यक्ति की भावना रहती मेरे घर में साधु का आहार हो जाए। अगर किसी प्रतिकूलता से वहां नहीं भी दे सका तो किसी न किसी चौके में जाके कोई फल दे आते हैं, कोई करते हैं कि हमारा हमारी अनुमोदना लग जाए। तो ये वैसे ही है जैसे खून से लिप्त वस्त्र को पानी से धोकर साफ करते हैं। तो ऐसे कहा कि अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते वारी। अतिथियों की जो पूजा है, उनको आहार दिया गया है, वह इसी प्रकार से है जैसे खून से लिपटे हुए वस्त्र को जल से धोना। तो खून से लिपटा मतलब पंच सूना करके घर के अंदर जो आरंभ परिग्रह करके और खाना बनाया गया है, अगर उसमें से अतिथि को भोजन करा दिया, शुद्ध बना लिया गया, तो समझो वो पाप सारे नष्ट, वो भोजन शुद्ध बन गया। उसको लोग प्रसादी कह करके ग्रहण करते हैं। आप भी प्रसाद देते हो ना? जितने लोग खड़े होते हैं सोचते हैं सबको प्रसाद दे दें, और अपने खाने वाली चीज को तो नहीं प्रसाद कहते, लो मेरा प्रसाद ले लो। संतों के आहार से बचे हुए अन्न को कह दो प्रसाद, क्योंकि वो बहुत पवित्र हो जाता है। तो महानुभाव, ये पांच अति चार हमने आपको अतिथि संविभाग के बताए। इस प्रकार से 12 व्रतों का पालन करने वाले श्रावक श्राविकाएं मर करके यानी अंत समय में धार्मिक संलेखना पूर्वक मरण करके और 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। ये आप इसका फल जानना। सोचो कि कोई व्रत करे चाहे ना करे, व्रत को लें चाहे ना लें, तो फर्क क्या है? ये फर्क है कि जो नहीं पालन कर रहे हैं व्रतों का, वो कहीं भी जा सकते हैं, नरक में भी, तिर्यंच गति में भी, कुछ पुण्य कर लिया तो किसी देव में भी। लेकिन जिन्होंने व्रतों को लिया है, वो नियम से देव गति में जाएंगे और 16 स्वर्ग तक दरवाजे उनके लिए खुले हैं। आज पंचम काल के अंतर अंदर भी और परंपरा से इन व्रतों को पालन करने का फल मोक्ष है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। कल से आपकी छह ढाला की पांचवी ढाल प्रारंभ हो जाएगी। तो एक दूसरे को सूचित करके छह ढाला को खूब अच्छे से अध्ययन करें और परीक्षा देने के लिए भी तैयार रहें। कुछ ही दिन में मैं परीक्षा की तारीख भी घोषित करूंगी।